वैधवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 6।
ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो नमो सीतानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोहे सौवसाऊनं वेदक वेदक वेदकं अवेदकं वेदकं कसं सिद्धं सिद्धं प्रणमीय सरसा वोच्चं वेदक महायारमं।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 31 पर आ गए, 31। आप आ ही आए ना, अभी इसमें वेदक अधिकार में उदय और उदीर्णा की बात चलेगी। तो उदय तो पता है, स्थिति पूरी होने पर जो निषेक उदय में आते हैं उसको उदय कहेंगे, और जो ऊपर से अपकर्षित होकर जो उदयावली में दिए जाते हैं और उदय में आते हैं उसको हम उदीर्णा कहेंगे। तो एक तो है मूल प्रकृतियों की उदीर्णा और उत्तर प्रकृतियों की उदीर्णा। उसमें यह भी ये बात चल रही कि एक प्रकृति की उदीर्णा होते हुए अन्य प्रकृतियों की हो रही है कि नहीं हो रही है, जिसको हम सन्निकर्ष कहते हैं, और उसको हमने ओघ में देख लिया था। अब आदेश में बात चल रही थी और हमने नारकियों में पढ़ा था। अब 31 पृष्ठ पर हम तिर्यंचों की बात यहाँ पढ़ेंगे। तिर्यंचों में मिला आपको नीचे का पैराग्राफ, दर्शन मोहनीय 3, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और 9 नौकशायों का भंग ओघ के समान है। जरा हम ओघ का भंग देखते हैं कि दर्शन मोहनीय 3 है मिथ्यात्व का, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो 29 पेज से ये सन्निकर्ष शुरू हुआ है ओघ से, हम वहां देखते हैं नीचे के पैराग्राफ में। तो जो मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला है, तो कौन करता है मिथ्यात्व की उदीर्णा? तो मिथ्या दृष्टि। अभी संक्रमण का नहीं सोचना है, अभी पलट गया, अभी विषय भी संक्रमित हुआ है। इसलिए याद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार हम ये बहुत लंबे काल तक हम संक्रमण की बात की है हमने, प्रदेश की, प्रकृति की, स्थिति की, अनुभव की, सबकी, यानी जिसका उदय है उसकी उदीर्णा होती है ये नक्की करना है। तो जो मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला जीव है वो 16 कषाय और 9 नौकषायों का कदाचित उदीरक होता है, कदाचित अनुदीरक होता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 16 कषाय जो है उदय रूप की बात करना, एक साथ तो उदय में नहीं आते, 4 क्रोध उदय में आएंगे, या 4 मान या 4 माया या 4 लोग। तो क्रोध का है तो क्रोध का है और अन्य का नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या लोभ का है क्रोध का नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो कदाचित उदीरक है कदाचित नहीं है का, क्योंकि ये 4-4 के ऑप्शन होते हैं।
इस
चारों लोग चारों आएंगे, और 9 कषायों में देखो अभी किसी एक वेद का उदय का उदीर्णा कर रहा है तो अन्य की नहीं कर रहा, तो किसी भी वेद की उदीर्णा हो सकती है जो मिथ्यात्व की उदीर्णा कर रहा है। अब हास्यरति युगल या हास्यरति या शोकरति, तो वो युगल में भी होगा। और उदय में ये प्रतिपक्षी ने 4 अलग अलग भंग हो गए भय जुगुप्सा के भी, दोनों का उदय होगा, अकेले भय का होगा, अकेले जुगुप्सा का होगा, या दोनों का भी नहीं होगा। तो इसमें ये सारे कदाचित उदीरक है कदाचित अनुदीरक है। अभी यहाँ उदय की अपेक्षा सोचना हमेशा, उदीर्ण उसी की होगी जिसका उदय होता है। मन तो ऐसा नहीं, उदय है इसलिए उदीर्ण होगी ही, क्योंकि दसवें गुण स्थान के अंत में या जिसके आवली प्रमाण निषेक बाकी है उसका उदय है परंतु उदीर्ण नहीं है। सम्यक तो प्रकृति जब कृतकृत्य वेदक में एक आवली प्रमाण बाकी रहती है, उदय है परंतु उदीर्ण नहीं। इस तरह से ये दो जगह तो उसकी उदय होते हुए भी उदीर्ण नहीं होगी। हाँ, परंतु वो कौन से वेदनीय की? तो वेदनीय और आयु की तो छठे के ऊपर नहीं होती है। आयु की भी नहीं होती, वेदनीय की भी नहीं होती, और बाकी जो मूल प्रकृतियां हैं, जो उत्तर प्रकृतियां हैं, तेरहवें में उदीर्णा की विच्छित्ति होती है टोटल। चौदहवें में तो किसी की उदीर्णा नहीं है, बस एक एक निषेक जो है जहाँ जितना है वो उदय में आएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ उदीर्ण है, जिसका उदय है उसकी करनी पड़ेगी। तो वहाँ कितने प्रकृतियों का उदय है उसको सोच कर फिर वहाँ। अब यहाँ तो आपने तो टोटल बताया, हम यहाँ मात्र मोहिनी की बात देख रहे हैं। अच्छा। यह जो संख्या बताई जाएगी वो मोहिनी में से बताएगी। हमने जो उदीर्णा का प्रकरण पढ़ा था या आपको जो याद होगा, तो सभी कर्म की बात। अभी मैंने आयु और वेदनी की इसलिए बताई कि छठे गुणस्थान में उसकी विच्छित्ति होती है उदीर्णा की। उदय तो चौदहवें तक है। हाँ। वेदनी का आयु का देखो, ये हम ओह से देख रहे जहाँ ये हो गया। फिर सम्यक्व की उदीर्णा करने वाला है। सम्यक्व की उदीर्णा कौन करता है? जिसके सम्यक प्रकृति का उदय है। केवल सम्यक दृष्टि नहीं, वेदक सम्यक दृष्टि कहना पड़ेगा। औपशमिक वाला नहीं करता है और ना ही क्षायिक करता है। तो वो जीव 12 कषा और 9 कषांक का कदाचित उदीरक है, कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि वहां समय दृष्टि के 12 कषायों का कदाचित उदीरक क्यों कहा? क्योंकि समय प्रकृति की उदीरना तो 7 तक है, एक बात तो ये, और 12 में से भी
प्रतिपक्ष
जो हाँ उदय रूप है उसी की उदीरना होगी, वहां भी प्रतिपक्ष बनता है उदय की अपेक्षा। देखो अभी सम्यक की उदीरना करने वाला अनंतानुबंधी की उदीरणा करेगा कि नहीं करेगा, आपके लिए प्रश्न। उदय नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी विसंयोजना से कोई मतलब नहीं अभी यहाँ पर। उसका कारण समय दृष्टि है, अनंतानुबंधी संक्रमण होगा। हमने देखा ना, संक्रमण तो हो रहा है बंधने वाली में, परंतु अभी उदीरणा की बात है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से जान लेना। सम्यक मिथ्यात्व की उदीरणा कौन करता है? तो वो जो अन्य की करता है कि नहीं करता,
12 कषाय,
तो उसमें वो 12 कषाय पर लगा है। अनंतानुबंधी का तो नहीं करेगा, उसका उदय नहीं है। अब जो अनंतानुबंधी क्रोध की करने वाला है, देखो जहाँ अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है वहाँ नियम से किसका उदय है?
नियम से।
हाँ, नियम से।
नियम से बाकी कषाय का उदय 12 का।
12 का नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध के साथ प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध, तो 3 क्रोध का नियम से उदीरक होगा और अन्य का वहाँ उस समय नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा? 3 क्रोधों का नियम से उदीरक होता है। जो क्रोध की उदीरणा कर रहा है उसी समय वो मान के नहीं करता है, अन्य 3 की करेगा। ये कल की बात जरा देख रहे हो ओग से, 29 पृष्ठ पर हम नीचे के पैराग्राफ में देख रहे थे। 29 पृष्ठ पर नीचे के पैराग्राफ में हम देख रहे थे। हाँ, पहले बताया था ना, क्योंकि दोषी साहब आए ना, उनके विषय समझ में आवे, क्योंकि वहां तो ओग के समान इतना ही बता दिया। तो ओग क्या है उस जरा देख लेते हम। अब जो अनंतानुबंधी क्रोध की उदीरणा कर रहा है, अब आप ही से प्रश्न कर रही हूं मैं, तो मिथ्या तो की उदीरणा करेगा कि नहीं करेगा?
दूसरे गुणस्थान पे है।
हाँ,
वो नहीं करेगा।
बहुत अच्छा, दूसरे गुणस्थान वाला नहीं करेगा, पहले वाला करेगा। और नौ नौ कषाय में तो सर्व जगह जो लागू होता है, ऑप्शनल जो है, तो कदाचित उदीरक है कदाचित नहीं है। वैसे ही मान पर, माया पर, लोक पर लगा है। अब अप्रत्याख्यानावरण की जो उदीर्णा कर रहे हैं, क्रोध की ही ले लेते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीर्णा, अब बताना कौन कौन से जीव करते हैं। हमारा कल हो गया इसलिए आप ही से पूछ रही हूँ। अकेला चौथा वाला करेगा, पहले वाला पहले से चौथा है ना, क्योंकि हमने हमेशा सोचा है ना अप्रत्याख्यानावरण चौथे वाला करेगा। पहले में भी है, दूसरे तीसरे चौथे, तो उदीर्ण करने वाला कौन सा है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी है। अब उसके लिए नियम से उदीर्णा किसकी होगी? अप्रत्याख्यान क्रोध का जो उदीर्णा कर रहा है उसके लिए नियम रूप उदीर्णा किसकी होगी? मंजू तैयार,
हाँ
बोलो। हाँ, प्रत्याख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध, क्योंकि तीनों एट ए टाइम उदय रूप हो गए। और बाकी जो है मिथ्या तो की करेगा या नहीं भी करेगा, पहले वाला करेगा, दूसरा तीसरा चौथा वाला नहीं करेगा, अनुदीरक होगा, ऐसे हर एक में लगा लेगा।
जब ये अनंतानुनंदी का उदय है तभी प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन का उदय है, वो अनंतानुनंदी रूप हो जाएगा?
ना ना ना, प्रत्येक अपने रूप से ही रहते हैं,
खाली अनुभाग,
हाँ, उनके अनुभाग
बढ़ोतरी
होगी, ज्यादा होगी, बढ़ोतरी होगी नहीं, वो तो अधिक अनुभाग में उदय में आएंगे। उसका उदय किस रूप चलेगा? उत्कृष्ट अनुभाग, जो पहले गुण स्थान में ऐसा अनुभव है कि वो स्वयं मिथ्या तो यानी सम्यक्त को नहीं हो रहे, नहीं होने दे रहे, अनंतानुबंधी का कार्य सम्यक्त तो नहीं हो रहे, हाँ। होने देता, परंतु उसके उदय के साथ अन्य कषायों के अनुभाग ऐसे है कि वो भी मिथ्यात्व तो में ही रखते हैं, सम्यक्त तो नहीं होने देते, सम्यक्त का घात करते।
जैसे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है, हाँ, तो भी है
असंजोलन का भी है, और सभी के जो स्पर्धक है वो अत्यंत तीव्र है, ऐसे तीव्र है कि वो सम्यक्त्व का घात करते हैं या नहीं होने देते, हाँ, स्वयं अपने से, उनकी अपनी शक्ति। जब अनंतानुबंधी के साथ उदय में तो उनके ऐसे स्पर्धकों का उदय है, ये एक कर्मकांड में लिखा है ऐसा। अभी अभी
तो दोनों प्रकृति में कोई फर्क ही नहीं रहा ना, अनंतानुबंधी
ऐसा नहीं है, फिर भी वो अनंतानुबंधी के साथ वो मिथ्यात्व का भी उदय, और इनका इतना तीव्र उदय, अकेला उनका अपना उदय होता तो इतना तीव्र नहीं होता है। जैसे प्रत्याख्यानावरण का उदय पहले वाले को भी है, और प्रत्याख्यानावरण का उदय पांचवे वाले को भी,
वो व्रत नहीं होने देता,
तो उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं? उसके अनुभाग में कुछ डिफरेंस है, हाँ होता ही है, क्योंकि दोनों जगह वो सर्वघाती ही है। पहले में भी सर्वघाती का ही उदय है, और क्योंकि प्रत्याख्यानावरण प्रकृति सर्वघाती, फिर भी पांचवे वाले को जो उदय है और पहले वाले को उदय है, उन उदय में अनुभाग का डिफरेंस है। जब पहले में उदय है तो अनंतानुबंधी के जैसा बिहेव करते हैं। हमने देखा ना, एक उधम मचा रहा है तो दूसरे भी उतने ही मचाते हैं ऐसा, हाँ। सर्वोत्कृष्ट उसका
नहीं, अलग
नहीं, अपना अपना अलग अलग, हर एक का अपना उत्कृष्ट की मर्यादा अलग अलग,
इसीलिए मैंने पूछा कि अनंतानुबंधी रूप तो नहीं हो जाते?
नहीं 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 होते, वो अपने रूप से ही, नहीं तो चार का उदय नहीं कहते, एक का उदय कहते हैं। पर रूप से अगर उदय होता तो एक का उदय कहते हैं। जैसे हम सम्यक दृष्टि के, सम्यक प्रकृति का उदय है, और मिथ्या तो उस रूप होकर उदय में आती है, तो क्या मिथ्यात्व का उदय कहते हैं वहां पर? जिसका उदय है, जिस रूप है, उसी का उदय कहलाता है।
क्योंकि एक आवली तक जब भी जो जिसका अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है और मिथ्यात्व में जाता है, तो एक आवली तक उदय नहीं है, तभी भी सम्यक्त्व का घात करता है, तो ये तीन प्रकृति कारण रूप वहाँ पे गिनी
नहीं, वहाँ मिथ्यात्व स्वयं पड़ा है ना,
हाँ। नहीं, सम्यक्त्व नहीं होने देता,
नहीं होने देता, तो मिथ्यात्व स्वयं है वहाँ पर।
अच्छा,
और अन्य तीन कषाय भी है वहाँ पर, और उसका भी सर्वोत्कृष्ट अनुभाग का ही उदय चल रहा है। अभी हम सन्निकर्ष देख रहे थे, अप्रत्याख्यान की बात हमने देखी। जब अप्रत्याख्यान का उदय है, उसकी उदीर्णा है,
दो नियम
तो से। नियम से प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध की है ही, और उस समय अनंतानुबंधी का क्या होगा, होगा भी या नहीं भी होगा, वो प्रत्यक्ष उनकी उदीर्णा चल रही है, तो उसकी उदीर्णा तो पहले से चौथे तक कोई भी कर सकता है। चौथे वाला अगर उदीर्णा कर रहा है उस समय अनंतानुबंधी की नहीं कर रहा, पहले दूसरे में करेगा, तीसरे चौथे में नहीं करेगा। इसी तरह हर एक पर लगाना, प्रत्याख्यान उनके साथ संज्वलन की नियम रूप होगी, बाकी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बाकी सबको लेना वो कदाचित नहीं। अब जो प्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीर्णा कर रहा है वो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा करेगा कि नहीं करेगा, सम्यक प्रकृति प्रत्याख्यानावरण की उदीर्णा कर रहे हैं कौन करता है, एक से पांच, बहुत अच्छा। वो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा करता है कि नहीं करता, नहीं करने वाले कौन कौन है, पहला,
दूसरा,
तीसरा, बहुत अच्छा। साइक वाले की तो सत्ता नहीं, उपशम वाले को भी छोड़ देना तो वेद समय दृष्टि करेगा, बहुत अच्छा। इसी तरह से हमें ये सब में लगाना है। अब हम आते फिर तिर्यंचों की बात हमने शुरू की थी कि तिर्यंचों में 31 पेज, आज का विषय यहाँ से शुरू होता है, थोड़ी हमने रिवीजन की ओम की अपेक्षा। तो तिर्यंचों में दर्शन मोहनीय तीन अने मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और नौ नौ कषायों का भंग ओघ के समान है। अभी तो हमने ओघ में देख लिया ना क्या क्या होता है किसके साथ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीर्णा करने वाला जीव मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व कौमा लगाना, अनंतानुबंधी चतुष्क और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और नौ नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। तिर्यंचों में प्रत्याख्यानावरण की उदीर्णा करने वाले तिर्यंच कितने हैं और कौन कौन से हैं?
सभी
करेंगे,
सभी
प्रत्याख्यानावरण की उदीर्णा करने वाले कौन है?
एक से पांच वाले,
एक से पांच गुणस्थान, तो सभी तिर्यंच आ गए उसमें। अब वो जीव यानी सभी अनंत है, सभी जीव उसकी उदीर्णा करने वाले, तो जो उसकी उदीर्णा करने वाले के साथ मिथ्यात्व की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी, पहले वाले की होगी, ऊपर की गुणस्थान में नहीं होगी। सम्यक तो प्रकृति की
चौथे पांचवें में होगी, वेदक से चौथे पांचवें में,
चौथे पांचवें में किसके नहीं होगी,
सम्यक प्रतिशाही की नहीं होगी।
शायिक होता है पांचवे में,
नहीं चौथे गुण स्थान में शायिक होता है,
चौथे में होता है एक शायिक,
और उपशम वाले की
बहुत
नहीं
अच्छा हाँ। तो सम्यक मिथ्यात्व की
तीसरे में होगी,
बाकी नहीं,
बाकी नहीं।
सम्यक प्रकृति की कब होगी? चौथे पांचवे वेदक समय,
वेदक समय
उपशमिक वाले की नहीं होगी,
अनंतानुबंधी के एक दो में।
देखो आगे उसके बाद कौन है? अनंतानुबंधी चतुष्क,
पहले दूसरे गुण
मंजू बे हाँ? सम्यक मिथ्यात्व में पहले वाले को नहीं है, यानी सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा कौन करेगा? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के साथ मात्र तीसरे वाला करेगा, जहाँ उदय है। पहला नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, चौथा नहीं करेगा, पांचवा नहीं करेगा। अनंतानुबंधी चतुष्क की बात देखी हमने, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की कौन करेगा? हाँ लक्ष्मी बेन, पहले से चौथे तक सभी करेगी, पांचवे वाला नहीं करेगा। और नौ नौ कोषाएं तो वो तो हमने देखी, प्रतिपक्ष जो है। अब कहते वो क्रोध संज्वलन का नियम से उदीरक है, क्योंकि जहां प्रत्याख्यान का उदय वहां तो क्रोध का है ही है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि सात कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी प्रत्याख्यान के क्रोध पर मान माया लोभ
संज्वलन,
और संज्वलन के क्रोध मान माया लोभ, सबके यही बात है। यहाँ तो ऐसा ले लेना, तिर्यंचों में जो संज्वलन की कर रहा है क्रोध की, वो प्रत्याख्यानावरण की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर ही रहा है, नियम से कर रहा है।
होगी उसको।
मनुष्यों में ऐसा कह सकते हैं?
नहीं, छठे सातवें वाला कलेश संजय,
वो छठे से लेकर नौवे तक उदीर्णा करेगा, परंतु वहाँ प्रत्याख्यानावरण की उदीर्णा नहीं है, इसलिए मार्गणा में ये फर्क हुआ। तिरियंचों में पांच ही गुण स्थान है, तो वहाँ प्रत्याख्यान और संज्वलन दोनों का उदय उदीर्णा तो चलेगी। मनुष्यों में संज्वलन की है परंतु प्रत्याख्यानावरण की नहीं है, ऐसा बन सकता है? यहाँ तिरियंचों में नहीं बनेगा, इसलिए आठों को एक साथ लिया। ये आठ यानी कौन से? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन की बात। एक की बात बताई क्रोध की, और बाकी सात में ऐसा ही होता है बता दिया। सात कषाय कौन से समझ में है ना? एक क्रोध बता दिया प्रत्याख्यानावरण का, तो बाकी प्रत्याख्यान और संज्वलन। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में स्त्रीवेद की उदीर्णा नहीं होती। जब हम मनुष्य पर्याप्त वाली जो उसका भेद बताएंगे या तिर्यंच पर्याप्त कहेंगे, तो उसमें मात्र पुरुष वेद और नपुंसक वेद लेना। तिर्यंच पर्याप्त कहने से कौन है जीव? पुरुष वेदी या नपुंसक वेदी पर्याप्त तिर्यंच, क्योंकि वहां योनिमति का एक भेद अलग बताया। इसलिए जब पर्याप्त तिर्यंच कहते हैं तो उसमें योनिमति को नहीं लेना, तो वहां स्त्रीवेद का उदय नहीं है पर्याप्त तिर्यंचों में, तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी। योनिनि तिर्यंचों में स्त्रीवेद की उदीर्णा को ध्रुव करना चाहिए। ध्रुव करना यानी वो स्त्रीवेद की ही उदीर्णा करेगा, अन्य की करेगा ही नहीं। क्या रह गया?
एक सेंटेंस है।
तथा योनिनि तिर्यंचों में पुरुष वेद और स्त्रीवेद की उदीर्णा नहीं होती, क्योंकि उसका स्त्रीवेद का ही उदय है और उसी की उदीर्णा होगी। योनिनि तिर्यंचों में स्त्रीवेद की उदीर्णा को ध्रुव करना चाहिए। तिर्यंच पर्याप्तों में दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के जीव उसमें पाए जाते हैं, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। हाँ, कुछ प्रश्न? ओह, नपुंसक वेद चाहिए, यहाँ स्त्रीवेद लिखा। यहाँ यहाँ नीचे से नीचे की लाइन 51 नंबर का पैराग्राफ। योनिनि तिर्यंचों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद की उदीर्णा नहीं होती। जोनिनि पुरुष नपुंसक नहीं, ये तो बाय मिस्टेक वहां स्त्रीवेद पड़ा है। क्योंकि उसका उदय ही नहीं है ना, स्त्रीवेद का उदय है, तो उसकी उदीर्णा को ध्रुव करना चाहिए। किया करेक्शन मंजू। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य पर्याप्त, अब ये सारे मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला जीव 16 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है, यानी क्रोध का उदय उदीर्णा है तो अन्य की नहीं है, इसलिए कदाचित कह दिया। 6 ही लिए, वेदों को नहीं लिया, क्योंकि ये कौन से है?
नपुंसक वेद लिए।
हाँ, तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त है ना, यहाँ लब्धि अपर्याप्त की बात,
नपुंसक
और मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, ये नियम से नपुंसक वेद के उदय वाले होते हैं। तो कहते हैं नपुंसक वेद का नियम से उदीरक होता है। तो ये कहेंगे स्त्रीवेद और पुरुष वेद की उदीरणा करेगा ही नहीं, अनुदीरक कहेंगे। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा? मिथ्यात्व की करने वाला नपुंसक वेद का नियम से है, तो नपुंसक वेद का करने वाला नियम से किसकी करेगा? मिथ्यात्व का, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है, और बाकी का
ऑप्शनल है,
करेगा या नहीं करेगा, उदीरक या अनुदीरक। अनंतानुबंधी क्रोध की उदीर्णा करने वाला जीव मिथ्यात्व नपुंसक वेद और तीन क्रोधों का नियम से उदीरक होता है। देखो देखो मिथ्यात्व का उदीर्णा करने वाला अनंतानुबंधी का होगा ही ऐसा नहीं, परंतु जो अनंतानुबंधी का कर रहा है वो नियम से मिथ्यात्व का कर ही रहा है। छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है, क्योंकि उसमें भी उदय में ऑप्शनल है ना, वो प्रतिपक्ष है। इसी प्रकार शेष पंद्रह कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये बात ख्याल में आई मंजू भाई? हाँ। हास्य की उदीर्णा करने वाला जीव मिथ्यात्व नपुसक वेद और रति का नियम से उदीरक होता है, क्योंकि हास्य के साथ तो रति होती है उदय रूप, और यहाँ लभ्य पर्याप्त है, इसलिए मिथ्यात्व और नपुसक वेद को तो फिक्स रखना ही है। सोलह कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है, क्योंकि उदय में फिर उसके प्रतिपक्ष बन सकता है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी रति का जो उदीरक है वो नियम से किस किस का होगा? मिथ्यात्व, हाँ, हास्य का होगा, मिथ्यात्व का होगा और नपुसक वेद का।
अनंतानुबंधी का भी होगा ना?
अनंतानुबंधी का नहीं होगा, क्योंकि क्रोध का होगा या मान का या माया का होगा,
एक का कल्याण,
एक किसी का होगा। तथा इसी प्रकार अरति और शोक की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। भय की उदीरणा करने वाला जीव मिथ्यात्व और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, क्योंकि उस समय भी जुगुप्सा का होगा भी नहीं भी होगा ऐसा बन सकता है। शेष का कदाचित उदीरक होता है। इसी प्रकार जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब ख्याल में है ना कैसा विचार करना है इसके ऊपर, वहां नियम रूप जो जो होते हैं उसको उसके साथ बता देंगे। जैसे हास्य के साथ रति नियम रूप है, मिथ्या तो और नपुसक वेद तो है ही है। अनंतानुबंधी का जहां है वहां तो मिथ्या तो भी है, नपुसक वेद भी है, तो उसको उसके साथ ले लिया।
उसके साथ तीन कषाय भी लेना पड़ेगा,
तीन अन्य तीन क्रोध को भी ले लिया,
क्रोध
क्रोध के साथ क्रोध को ले। अब मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्री वेद की उदीरणा नहीं होती। यहाँ भी मनुष्य पर्याप्त में नपुसक वेदी और पुरुष वेदी समझते, तथा मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद की उदीरणा नहीं होती। इनमें स्त्री वेद की उदीरणा ध्रुव करनी चाहिए, जैसे अभी हमने तिर्यंचों में पढ़ा है। किंतु इतनी विशेषता है कि चार संज्वलन की उदीरणा करने वाला जीव स्त्री वेद का कदाचित उदीरक होता है। ऐसा क्यों कहा? हाँ दोषी साहब आप बताने।
चार संज्वलन की उदीरणा करने वाला,
हाँ,
शनि चढ़ रहा है और इससे चढ़ रहा है
तो स्त्री वेद का कदाचित उदीरक कैसा होगा? और ये बात मनुष्य ने की चल रही थी यहाँ पर। हाँ बोलो मनु। हाँ जोर से। हाँ तो क्या होगा? देखो यहाँ क्या तो उसका उदीरक नहीं है, यही बात
होगा।
वैसा नहीं है,
पहले
नपुसक सॉरी नवे गुणस्थान के पहले भाग में स्त्री वेद का उदय है, दूसरे भाग में संज्वलन का उदय है, उदीरणा है, परंतु स्त्री वेद की नहीं है। ख्याल में आई बात? संज्वलन की उदीरणा चल रही है परंतु स्त्री वेद की नहीं हो रही है, मनुष्य नहीं होने के बावजूद। वही तो आपने शुरुआत बराबर की थी, परंतु उसका कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ। यानी स्त्री वेद का उदीरक है तो संज्वलन का तो होगा ही, किसी
की,
परंतु जो संज्वलन का कर रहा है
वो नियम से नहीं होगा,
वो स्त्री वेद का करेगा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो दूसरे भाग में चला गया नवे गुणस्थान, तो अपगत वेदी हो गया, वहाँ तो किसी भी वेद की उदीर्णा नहीं है। अब देवों में देखेंगे हम, देवों में मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला जीव 16 कषाय और 8 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाले ने मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ 16 कषाय और 8 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है ऐसा कहा, किसको छोड़ा? नपुसक वेद को। वहां नपुसक वेद की तो उदीर्णा कभी होगी ही नहीं, क्योंकि उसका उदय ही नहीं है, इसलिए 8 नौ कषाय दिए। नपुसक वेद बिना। अब सम्यक्त्व की उदीर्णा करने वाला जीव, सम्यक्त्व की उदीर्णा कौन कर रहा है मंदावे? हाँ, वेदक सम्य दृष्टि गुण स्थान चौथा देव है ना। हाँ, सम्यक्त्व की उदीर्णा करने वाला जीव 12 कषाय और 8 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। यहाँ अनंत अनुबंधी को निकाल दिया, क्योंकि
ये 8 नौ कषाय लिया है।
हाँ,
इसमें नपुंसक वेद का,
क्योंकि उसका उदय ही नहीं ना देव है। हाँ, उसका कभी उदीर्ण होगी नहीं वहां पर। जैसे नारकी को नपुंसक वेद की ही उदीर्ण होगी, अन्य दो की होगी ही नहीं। देवों में स्त्रीवेद की उदीर्ण होगी, अन्य की होगी, ये सामान्य देवों की बात चल रही। जहाँ मात्र पुरुष है
सनत कुमार में,
तो हाँ
अपर पुरुष का दोनों के लिए होगी।
इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी जो सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा कर रहा है वो तो 12 कषाय और 8 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। अनंत अनुबंधी क्रोध की उदीर्णा करने वाला जीव मिथ्यात्व और 8 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। कदाचित क्यों का?
दूसरे गुण स्थान में।
हाँ,
मिथ्यात्व का उदीरक नहीं है।
नहीं है, पहले में है।
हाँ,
दूसरे में नहीं है।
और 8 नौ कषाय तो,
और 8 नौ कषाय का तो हमेशा हमने देखा वैसा, परंतु वो 3 क्रोधों का नियम से उदीरक होता है। जो अनंत अनुबंधी क्रोध की उदीर्णा कर रहा है, यानी पहले या दूसरे गुण स्थान वर्ती, वो नियम से अन्य 3 का उदीरक है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान माया और लोभ कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, जैसे क्रोध पर गठित किया वैसे मान माया और लोभ पर। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीर्णा करने वाला, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन इन दो क्रोधों का नियम से उदीरक होता है, वे तो हमने अन्यत्र भी देखा। और अनंतानुबंधी क्रोध 3 दर्शन मोनिय और 8 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है, यानी अनंतानुबंधी का पहले दूसरे वाला करेगा, 3 दर्शन मोनिय का मिथ्यात्व का मिथ्या दृष्टि करेगा, सम्यक प्रकृति का
चौथे
गुण स्थान वाला करेगा,
सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे वाला करेगा,
सम्यक मिथ्यात्व का तीसरा गुण स्थान वाला करेगा। 8 नौ कषाय तो जो उदय रूप होगा उसकी उदीर्णा होगी। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि 11 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये 12 को एक साथ क्यों लिया?
क्योंकि उसमें ज्ञान पे उनका उदय रहता ही है।
हाँ, उनका उदय तो रहता ही है, इसलिए इनको ले लिया यहाँ पर। स्त्री वेद की उदीर्णा करने वाला जीव, देवों की बात चल रही है, स्त्री वेद का उदीरक है 3 दर्शन मोनिय 16 कषाय और 6 नौ कषायों का, कयायों का हुआ, कषायों का कदाचित उदीरक होता है। देखो स्त्री वेद की कर रहा है, इन्हें देवी है। अब 3 दर्शन मुनि जैसे हमने अन्यत्र देखे, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व की उदीर्णा करेगा,
सम्यक मिथ्यात्व
सम्यक दृष्टि और सम्यक प्रकृति की उदीर्णा करेगा,
तीसरा
वाला
चौथा
सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा करेगा, और 16 कषाय में भी ऐसे नहीं ना, जिसका
पहले गुण स्तन में
पहले दूसरे में अनंत अनुबंधी की करेगा,
चार चार कषाय करेगा
और बाद में तो सभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन की। इसी प्रकार यानी यहाँ छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक का, पुरुष वेद का तो बिल्कुल उदीरक नहीं ही है और नपुंसक वेद का भी नहीं है, इसलिए दो को नहीं लिया, स्त्री वेद के साथ लगा रहे तो बच्चे छह।
स्त्री वेद दो चीजें, एक तो बिल्कुल स्थान परिवर्तन ले रहे हैं, पहले दूसरा,
पहले दूसरा
और दूसरा ही ले रहे कि जब क्रोध का
अकेला क्रोध, जब क्रोध है तो चार हो या तीन या दो क्रोध जो है उसको एक साथ लेना। ये उदय के कूट आप याद करना, याद करने ने थोड़ा स्मृति में लाना, रिकलेक्ट करना। तो एक साथ कितने उदय रूप हो सकते हैं उसको हम ले सकते हैं आप, और दस नौ आठ सात जो है हमने सभी देखे थे सभी गुणस्थानों में। अब यहाँ पर हास्य की उदीर ना करने वाला जीव, तीन दर्शन मुनिय, सोलह कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है। अभी हास्य के साथ नियम रूप कौन होगा तो रति, बाकी सब कदाचित में ले लिया। अब यहाँ देवों में है तो नपुंसक वेद का तो है ही नहीं है, तो हमें तो 28 में से तो एक निकाली, अब रे 27 में हास्य के साथ लगा रहे तो 26 में लगाना है, तो उसमें से रति तो नियम रूप से होगी,
बाकी सब
और बाकी देखो कितने, तीन दर्शन मुनि, 16 कषाय, 19 हो गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद 20-21, भय जुगुप्सा 22-23। कौन रह गया, 16 कषाय, 16 अंति नहीं, कौन 21-22-23,
अरति शोक को छोड़ना है ना,
हाँ
अरति शोक,
अरति का तो होगा ही नहीं उससे,
अरति शोक दोनों का नहीं होगा,
दोनों का नहीं होगा, तो रति का नियम से उदीरक होता है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अरति शोक की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब भय की उदीर ना करने वाला जीव शेष प्रकृतियों का कदाचित उदीरक होता है, यानी उसमें जुगुप्सा भी कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता, मैंने उसमें
नपुंसक वेद को छोड़कर सभी,
नपुंसक वेद तो होता ही नहीं यहाँ पर। इसी प्रकार जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सौधर्म ऐशान में जानना चाहिए, यहाँ तक इसलिए ग्रुप बनाया है, यहाँ तक ही वो स्त्रीवेदी पाए जाते हैं, उसके ऊपर मात्र पुरुषवेदी हो गए। सनत कुमार से लेकर नवग्रवेक तक के देवों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद की उदीरना नहीं होती। तो वहां तक ही क्यों लिया, क्योंकि ऊपर नहीं है, ग्रवेक के भी नहीं है, परंतु तो वहां तक ये सारे अन्य जो कषाय की बात है मिथ्यात्व आदि की वहां तक लागू होगी,
ऊपर मिथ्यात्व की नहीं लागू,
ऊपर तो सभी सम्य दृष्टि है,
मिथ्यात्व
सोलवे तक है, परंतु वो है पहले वाली,
टूरिस्ट को नहीं गिनना है, नेशनलिटी हो जाती है ना,
नॉन रेसिडेंट हो गया वहाँ का नहीं हुआ अभी, देखो तो स्त्री वेद की उदीरना नहीं होती उनमें, पुरुष वेद की उदीरना ध्रुव करनी चाहिए, ऊपर भी पुरुष वेद की ही है, परंतु अन्य जो प्रकृति हमने यहाँ देखी मिथ्यात्व आदि समय मिथ्यात्व वो वहां पर नहीं घटित होगा, इसलिए एक ग्रुप अलग बनाया, जहां तक ये सभी प्रकृतियों की बात घटित होती है उनका एक ग्रुप अलग बनाया। अब अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व, वक्त्व नहीं हुआ, सुबह हुआ है कुछ, क त और व चाहिए उसको लगाना, वो ठीक करना, मिला कि नहीं, सम्यक्त्व की यानी सम्यक प्रकृति, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में। अब यहाँ ना मिथ्यात्व की उदय ना होगी ना सम्यक तो डायरेक्ट सम्यक्त्व की ली, तो उसके साथ अभी सन्निकर्ष लगा रहे, तो उसकी उदीर्णा करने वाला जीव 12 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। ये कदाचित में जिसका अनुदीरक होता है उसका नाम ही नहीं लिया, इसलिए अनंतानुबंधी की यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि सारे सम्य दृष्टि है। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी का तो नाम ही नहीं लिया, और सम्यक प्रकृति के साथ अभी कौन बचे है, तो कदाचित उदीरक है, तो 12 कषाय और 6 नौ कषाय। पुरुष वेद का नियम से उदीरक होता है। अब अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध की उदीर्णा करने वाला जीव वहां के सारे कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा? अप्रत्याख्यान आवरण की उदीर्णा
सभी कर रहे हैं,
सभी कर रहे हैं। तो अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध की उदीर्णा करने वाला जीव प्रत्याख्यान आवरण और संज्वलन इन दो क्रोधों और पुरुष वेद का नियम से उदीरक होता है। तो मेरा प्रश्न है, अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध की उदीर्णा कर रहा है, वो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा करेगा कि नहीं करेगा?
कर रहा है,
कर रहा है।
तो मतलब शायिक अगर है तो नहीं कर रहा है।
हाँ, अगर शायिक है तो नहीं करेगा, और कौन नहीं करेगा?
कृतकृति वेदक एक अवली काल तक नहीं करेगा, कृतकृति वेदक भी एक अवली काल तक नहीं करेगा, सम्यक व्यक्ति हो जाएगा।
वो तो करेगा ही नहीं ना बाद में, कृतकृत्य वेदक होगा तो
एक अवली के ऊपर होगा तो करेगा, एक अवली में इंटर होगा
इतना ही उसका होगा तो नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये हम अनुदिश अनुत्तर की बात देख रहे थे, वो वहां एक बीच में करेक्शन था, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व त्व बराबर करना, तो उसकी जो उदीर्णा करता है नहीं, वो वेदक समय दृष्टि है, वो 12 कषाय और 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक है, उसमें ऑप्शनल होगा। पुरुष वेद का तो नियम से उदीरक है। उसके बाद हमने पढ़ा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीर्णा करने वाला, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन इन दो क्रोधों और पुरुष वेद का नियम से उदीरक, सम्यक और छह नौकशांक का कदाचित उदीरक होता है, यानी वेदक समय दृष्टि होगा, वो कृतकृत्य वाला छोड़ना, उसकी भी आवली प्लस एक समय तक उदीरणा होती है, बाद में नहीं होती। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि 11 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, चार ही गुणस्थान है तो इन तीन का तो वहां नियम रूप से उदय उदीर्णा चलेगी। पुरुष वेद की उदीर्णा करने वाला जीव सम्यक 12 कषाय 6 नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। हास्य की उदीर्णा करने वाला जीव सम्यक्त्व 12 कषाय भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है, और कहेंगे रति का नियम से उदीरक होता है।
पुरुष वेद और रति,
पुरुष वेद और रति का नियम से उदीरक होता है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, तथा इसी प्रकार अरति और शोक की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या है?
अरति का करेगा तभी शोक का,
यानी वो वहाँ करता है, ये बात ख्याल में आती है कि नहीं आती? सर्वार्थ सिद्धि में भी अरति शोक के उदय उदीरणा है, ये बात सिद्ध होती है ना, उस पर भी लगाना, उसका अर्थ क्या है? भय की उदीरणा करने वाला जीव, हमने तो ये बात देखी थी नरकों में 33 सागर तक अरति शोक का उदय हो सकता है, हो सकता है, होता ही ऐसा नहीं, हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि सर्वार्थ सिद्धि में हास्य रति का ही हो रहा है, उसमें भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट शतार सहस्रार वाले को बताया 6 महीना, अन्य कहीं पर नहीं होता हास्य रति का उदय, कंटिन्यूअस उदय, अन्यत्र अंतर्मूर्त के लिए वहां तो छह महीने की काल बताया लगातार, मात्र सतर सत्र नहीं, अन्यत्र अंतर्मूर्त ही है, उससे ज्यादा नहीं। और यार
तीन
मनुष्य दोनों है ऑप्शन, और कुछ नहीं,
बाद में से ही मरकर
तो उसके आगे वो सदर चौक का उसके आगे नहीं होता, परंतु वहाँ हास्यरति की क्यों ये मुख्यता पता नहीं पर्टिकुलर। और यहाँ दो बार, एक बार नहीं दो तीन बार आई ये बात यहाँ, ऊपर नहीं है
नहीं नहीं तो सर्व सिद्धि वाले
का कषाय है, ऊपर कषाय की कमी होगी।
तो क्या ये जो हमने जो नरक में देखा 33 सागर वाले के, तो अपनी अपनी पृथ्वी में उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकता
नहीं,
है वहाँ पे भी अंतर्मूर्त
अंतर्मूर्त
की
अंतर्मूर्त ही हर एक
खाली सातवें नरक के लिए हमने
देखा, वो हो सकता है वाली बात होता ही ऐसा भी नहीं है, हो सकता है की बात
अंतर्मूर्त
अंतर्मूर्त ही अधिक से अधिक। हमने अंतर की बात देखी थी ना,
हाँ।
निकालो
नहीं अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त देखा था।
स्टेटमेंट में एक कॉमन चीज मिल रही है, क्या मिल रही है, सातवें नरक से मर के जीव तिरंजीव होता है,
हाँ।
तो शतार सहस्त्रार से मरकर तक
दोनों हो
सकते तिरंजीव जा सकते
हैं, हो सकता है
कोई ना कोई एक चीज जो है ना वहाँ पर
हास्य रति का तिरंजीव कोई
दुख हो रहा है उसको, हास्य हो रहा है और पूरे लाइफ टाइम तक क्या है जाना है तो लास्ट 6 महीने में होगा चेंज। देखो देखो अंतर का देख लो,
अंतर देखा था हमने,
अभी उनको देखने दो ना, हमने देखा था तो थोड़ा याद भी करेंगे।
नरक में दिखते हैं ना
मार्गणा में पेज 27, हाँ अंतरानुगम की अपेक्षा। देखो देखो आदेश से नारकियों में मिला क्या नीचे से पढ़ रहे, देखो मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क हास्य रति के उदीरक का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त के लिए रति शोक हुआ, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि अंतर घटित करना था इसको, काल में अगर घटित करते और अतिशोक का उत्कृष्ट काल निकालो वो पूरा 33 सागर कहते, अंतर करने के लिए वापस उसमें रति में अरति में शोक में लाना था ना, इसमें इसका देखो यहाँ बीच में लिखा है आगे जो हास्य रति मिला, हास्य रति अरति शोक के उदीरक का जगन्य अंतर, अंतर की बात है। एक समय कहा वो अपने प्रतिपक्ष प्रकृति की उदीरना कम से कम एक समय तक संभव है, यानी ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए उदीरना हुई और फिर वापस इसमें आ गए, मात्र सातवें नरक में निरंतर अरति शोक का उदय रहता है तथा वहां जाने के पूर्व भी अंतर्मूर्त काल तक इसका उदय रहता है, इसलिए तो हास्य रति के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा, ये तो ओघ की अपेक्षा, क्योंकि वहां तो पूर्व भव को भी लेना है इसलिए पूरा ले, और अगर मात्र नरकों में गठित करना है तो कुछ कम 33 सागर, क्योंकि वहां जाने के बाद हास्य का उदय पलट कर, यानी वहां भी था पहले पलट कर रति का हुआ फिर वापस हास्य में आया तो कुछ कम 33 सागर हो जाए, यानी वहां उसका उदय नहीं है वो बात नहीं है, दोनों से बात ख्याल में आती है ना, अधिक से अधिक लगातार चले तो 33 सागर, वही मैं काल में बताना चाहती थी आपको। शतार सहस्रार की बात हमने बताई ना आपको, हाँ आप पढ़ना यहाँ देखो देखो, और हास्य हो गया शतार सहस्राल कल्प में हास्य रति का उत्कृष्ट उदय 6 महीना तक संभव है, वहां पर भी केवल मां, इसलिए अरति और शोक के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर 6 माह कहा, ये तो देवों में भी उतनी बात बताएंगे, वो आदेश में देवों में भी उसकी बात बताई थी देवों में कि मात्र वहीं पर होती है 29 पृष्ठ पर, जहाँ देवों की बात चालू होती है ना 48 में, वहाँ नीचे से चौथी लाइन पांचवी शतार और सहस्रार में अरति शोक के उदीरक का अंतरकाल सामान्य देवों के समान है ने 6 महीना है, अन्यत्र ये नहीं घटित होता। मैं जो आपको काल बताना चाहती थी, देवों में देखो, देवों में काल 25 पेज पर नीचे से तीसरा, वहां सामान्य देवों के समान लिखा है, हास्यरति का भंग ओघ के समान है जो लिख दिया, तो देवों की अपेक्षा से ओघ में उन्होंने काल बताया था। देखो देखो यहाँ बात में जो कुछ बताना चाहती है पुष्पल अंतर में, मैं आपको 22 पृष्ठ पर बताना चाहती हूँ।
और नीचे तीरे अरे
आदेश में
नारकियों
में जो सामान्य नारकियों में बताया
अरति
और शोक के उदीरक का जघन्य काल तो एक समय सर्वत्र है, सब कहने मिथ्या तो नपुसक वेद और अरति शोक का उत्कृष्ट काल 33 सागर बताया, और उसके बाद ये तो सामान्य नारकियों में और सातवें नरक में घटित होगा, और अन्यत्र की बात देखो अभी ये भी 23 प्रेश पर पांचवी लाइन में, पहली पृथ्वी से छठी पृथ्वी तक के नारकियों में सामान्य नारकियों के समान भंग है, परंतु अभी नीचे के लाइन में अरति शोक के उदीरक का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ख्याल में ना, अन्यत्र कहीं भी अंतर्मूर्त से ज्यादा उसका उदय नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ 33 पृष्ठ पर, हमारे चल रही थी बात 33 पर, हमने अरति शोक की भी बात पढ़ी थी, भय की उदीर्णा करने वाले जीव के मिला सम्यक्त्व, ये कहाँ की बात चल रही है?
देवों में,
खाली देव नहीं, अनुदेशन
अनुदेशन में।
तो भय की उदीरना करने वाला जीव सम्यक्त्व 12 कषाय 5-9 कषायों का कदाचित उदीरक होता है, वेदों की बात नहीं, वो पुरुष वेद का ही उदीरक है, रह गए 6 में से भय के साथ लगा रहे हैं हम सन्निकर्ष
5 का,
तो 5 के साथ लगाएंगे तो उनका कदाचित उदीरक है, पुरुष वेद का नियम से उदीरक होता है। इसी प्रकार जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब ये हमारा सन्निकर्ष नाम का अनुयोग द्वार समाप्त होता है, आगे का नंबर बताओ भाई।
16
ये उत्तर प्रकृति उदीरणा, उसमें 16 अनुयोग द्वार है, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम। अभी अभी हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल और अंतर देखा, उसके बाद वो सन्निकर्ष भी बता दिया उन्होंने, सन्निकर्षण में भी एक जीव के एक प्रकृति की उदीरणा होते हुए अन्य की क्या पोजीशन है, उदीरक है क्या अनुदीरक है, वो बता दिया। अब यहाँ भंग विचय कहेंगे, तो ओग और आदेश, ओग से मिथ्यात्व सम्यक्त्व उम्य बराबर कर, मिथ्यात्व सम्यक्त्व 16 कषाय और 9-9 कषायों के उदीरक और अनुदीरक जीव नियम से है, उदीरक मिथ्या दृष्टि सारे मिथ्यात्व के उदीरक है, बाकी अनुदीरक है। सम्यक्त्व में 6 से लेकर 7वें तक के उदीरक है, कौन से? वेदक समय दृष्टि, बाकी अनुदीरक। ओक की अपेक्षा बात चल रही ना,
ये पे अनुदीरक जीव नियम से है,
नियम से होगे ही, क्या अकेले समय दृष्टि ही जीव है या अकेले मिथ्या दृष्टि है जीव इस विश्व में?
अच्छा, इनका अनुदिनाति
मिथ्यात्व जो है गुणस्थान, वो नियम से निरंतर है गुणस्थान, वैसे ही चौथा पांचवा छठा सातवा भी निरंतर है कि नहीं है?
निरंतर है।
तो जो मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्यात्व के नियम से उदीरक हो गई होगी, और जो मिथ्यात्व है मिथ्या दृष्टि वो समय प्रकृति के नियम से अनुदीरक होगी। वैसे समय प्रकृति पर लगाना, जो वेदक समय दृष्टि नियम से इस विश्व में होगी होगी तो समय प्रकृति की उदीरणा करने वाले हैं, परंतु वो मिथ्यात्व की अनुदीरणा करने वाले।
तो सोलह कसाई का नियम से होगा क्योंकि अनंत जीव है, कोई नियम से उसका होगा ही, इसीलिए मैंने पूछा।
होगी ना, परंतु अनुदीरक भी है कुछ, आप नहीं समझे। अनंत जीव में से अनंत जीव क्रोध की उदीरणा कर रहे हैं, मान माया लोग की नहीं कर रहे, अपना अपना हर एक का ग्रुप अलग होगा।
तो अनुदीरक को जो ऊपर के गुणस्थान भी लेना के
हर एक में जो क्रोध का कर रहा है।
अच्छा,
वो मान माया लोभ का अनुदीरक है कि नहीं है?
अच्छा,
तो एट ए टाइम दोनों हो गए कि नहीं जीव?
एक ही जीव की अपेक्षा,
ऐसा नहीं। देखो, प्रत्येक जीव पर लगाना, जो क्रोध के करने वाले है वो मान माया लोभ के अनुदीरक है, जो मान के उदीरक है यानी जो क्रोध की उदीरणा कर रहे हैं वो मान माया लोभ के अनुदीरक है।
अच्छा, नाना
जी, कोई मान की कर रहा है
वो बाकी के तीन
का अनुदीरक है, यानी क्रोध के उदीरक भी है अनुदीरक भी है, मान के उदीरक भी अनुदीरक भी है, माया के उदीरक भी अनुदीरक भी है, ऐसा लगा। क्योंकि एक जीव पर दोनों ही घटित होता है ना, एक किसी कषाय के उदीरक है, अन्य तीन के अनुदीरक है, अन्य तीन यानी अन्य बारह हो जाते। तो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व सोलह कषाय और नौ नौ कषाय के उदीरक और अनुदीरक जीव नियम से है, यानी कुछ जीव उदीरक है कोई अनुदीरक है, क्योंकि इसमें हमने देखे थे उदय रूप जो ऑप्शनल है। सम्यक मिथ्यात्व के कदाचित सब जीव अनुदीरक होते हैं, ये ऐसा क्यों कहा लक्ष्मीबेन? कम समय में होता है इसलिए बोलो, सांतर मार्गना है, ये कारण।
सत्ता वाले जीव की अपेक्षा बात है?
नहीं नहीं नहीं, सांतर मार्गना है।
हाँ,
उसमें जीव ही नहीं होगे कोई, तो सम्यक मिथ्या ऐसा भी हो सकता है, एक भी जीव सम्यक मिथ्यात्व की उदीरणा करने वाला नहीं है। तो कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व के कदाचित सब जीव अनुदीरक होते हैं, कदाचित नाना जीव अनुदीरक और एक जीव उदीरक होता है। सभी जीव उदीरक ऐसा कभी बनेगा कि नहीं?
नहीं,
नहीं बनेगा नहीं। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में होगा तो एक जीव होगा या अनेक जीव होगी। ऐसा भी होता है कि एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग काल तक एक भी जीव सम्यक मिथ्यात्व में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? पहला भंग सभी अनुदीरक, दूसरा नाना अनुदीरक है एक उदीरक है, और तीसरा भंग नाना अनुदीरक है और नाना उदीरक। इसीलिए सम्यक मिथ्यात्व के कदाचित सब्जी अनुदीरक है, तीन भंग बताए ना इसमें, ये ध्रुव भंग लेना, उसमें सब्जी अनुदीरक, कदाचित नाना जीव अनुदीरक और एक जीव उदीरक, और तीसरा कदाचित नाना जीव अनुदीरक और नाना जीव उदीरक होते हैं। यहाँ उन्होंने डाला है तीन नंबर, मगर सबसे लास्ट में डाला है, एक ही डाला, तीन भंग है। अब आदेश में लगाएंगे नारकियों में, ओग के समान भंग है किंतु इतनी विशेषता है, इनमें स्त्री वेद और पुरुष वेद के उदीरक जीव नहीं है, वो तो हमने ऐसे भी देखे थे। नाना जीवन की अपेक्षा सभी जीव नपुसक वेद के उदीरक ही है, नपुसक वेद के उदीरक जीव नियम से है। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि भी है समय दृष्टि भी है, तो वहाँ तो उदीरक है, सम्यक मिथ्यात्व के बारे में क्या कहेंगे?
वो तो ऐसे
जैसे हमने तीन बंग लगाए वैसे वहाँ पर भी होगी, नारकियों में भी। इसलिए कहा कि ओ के समान है। और जो विशेषता क्या है कि स्त्री वेद पुरुष वेद के नहीं
है, नपुंसक वेद के नियम से,
वो नियम से। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। तिरियंचों में ओग के समान भंग है, यानी वहां भी वो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है कदाचित नहीं, वो सब लगेंगे उसमें। पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है। तिरियंच पर्याप्तकों में स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं होती, और योनि तिरियंचों में पुरुष वेद और नपुसक वेद की उदीर्णा नहीं होती, इनमें स्त्री वेद की उदीर्णा नियम से होती है, इसके अनुदीरक नहीं है। जो योनि तिरियंच है उसमें स्त्री वेद के अनुदीरक नहीं है। पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व और नपुसक वेद के सब जीव उदीरक होते हैं, इनके अनुदीरक नहीं है, क्योंकि मिथ्या ऋषि गुण स्थान है और सारे नपुसक वेदी है, तो दोनों की उदीरना नियम से होती है। 16 कषाय और 6 नौ कषायों के उदीरक और नाना अनुदीरक नाना जीव नियम से होते हैं, क्योंकि कोई क्रोध की कर रहा है, कोई ईमान की कर रहा है, तो जो क्रोध की कर रहा है वो क्रोध का उदीरक है, अन्य का अनुदीरक है, यानी सबके अनुदीरक और सबके उदीरक जीव होंगे। मनुष्य त्रिक में नहीं, ये रह गया 16 कषाय हो गया ना। मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं होती, ये जैसे पहले हमने तिरियंचों में देखा था, तथा मनुष्यनियों में पुरुष वेद और नपुसक वेद की उदीर्णा नहीं होती। स्त्री वेद के कदाचित सब्जी उदीरक होते हैं, कदाचित, अभी मनुष्य त्रिक में इन जनरल बात बता रहे, कदाचित नाना जीव उदीरक और एक जीव नहीं, नहीं मनुष्य नियम में ही लगा रहे। देखो मनुष्य नियम में पुरुष वेद और नपुसक वेद की उदीरणा नहीं होती, ये तो बात बताए। अब ये मनुष्य निया स्त्री वेद के सभी उदीरक है कि नहीं है?
सभी नहीं है।
क्यों नहीं है? हाँ, श्रेणी में नहीं होती। तो स्त्री वेद के कदाचित सब जीव उदीरक होते हैं, कदाचित नाना जीव उदीरक और एक जीव अनुदीरक होता है, यानी उपशम श्रेणी में अपगत वेद होने पर। कदाचित नाना जीव उदीरक और नाना जीव अनुदीरक होते हैं, यानी एक से अधिक जीव अनुदीरक हो। इस प्रकार तीन भंग होते हैं। हाँ, ले सकते हैं ना,
नहीं वहाँ तो सत्ता ही नष्ट हो जाएगी ना, तो वहाँ पे तो यहाँ पे अच्छा, सत्ता वाले जीव
होते हुए, हाँ, हाँ। सत्ता होते हुए उदीरक अनुदीरक
तो सब श्रेणी लेनी पड़ेगी।
मनुष्य ने क्राइटेरिया है परंतु उसकी सत्ता ही नहीं है, ऐसा ले रहे। मनुष्य अपर्याप्तकों में, अभी मनुष्य अपर्याप्त जो है वो सांतर मार्ग है। मिथ्यात्व और नपुसक वेद का कदाचित एक जीव उदीरक होता है, कदाचित नाना जीव उदीरक होते हैं। 16 कषाय और 6 नौ कषाय उनकी अपेक्षा 8 भंग है, अश्विन में 8 भंग बताएंगे।
16 कषाय और 6
नहीं, वो बता रहे
मनुष्य अपर्याप्त तक की बात है।
अच्छा आप बताओ।
अनुदीरक है और उदीरक है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक भी जीव नहीं। एक उदीरक तो नियम से होगी और अनुदीरक भी नियम से होगी।
देखो
पर एक और अधिक
एक और अनेक लेना और उदीरक अनुदीरक लेना, और तभी होगी तो सभी उदीरक ही होगी, अनुदीरक होगी नहीं ऐसा भी बन सकता है, एक भी होगा तो ऐसा भी होगा ना।
हाँ, क्रोध के साथ एक सभी
एक ही क्रोध है, और उदीरक ही है, तो क्रोध का उदीरक है तो अन्य का अनुदीरक भी होगा।
तो सभी जगह ऐसे ले सकते हैं,
एक अनेक उदीरक अनुदीरक ऐसे उसके आठ भंग हो गए। एक उदीरक
अनेक उदीरक,
हाँ अनेक उदीरक
पीछे एक भी
एक, एक अनुदीरक अनेक अनुदीरक,
हाँ ऐसे चार भंग हो गए।
वो एक अनेक पर उसके दो दो करते थे ना, हाँ। उदीरक अनुदीरक आठ भंग हो गए।
एक ही कोई भी एक ही कसाई की अपेक्षा आठ आठ भंग हो गए,
हाँ एक एक को ही लगाना है ना, हाँ। हाँ। तो सोलह कसाई और छह नौ कसाई की अपेक्षा आठ भंग होते हैं। देवों में ओघ के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि नपुसक वेद की उदीर्णा नहीं होती। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर व्यंतर हुआ ज्योतिषी सौधर्म और ऐशान देवों में जानना चाहिए। सनत कुमार से लेकर नवग्रहिक तक के देवों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इनमें स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं होती। इसी प्रकार के लिए उसको उसी ग्रुप में रखा। इनमें पुरुष वेद के उदीरक नियम से होते हैं, अनुदीरक नहीं होते। अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक्तों के कदाचित सब्जी उदीरक होते हैं, कदाचित नाना जी उदीरक होते हैं, और एक जीव अनुदीरक होता है।
तो यहाँ पे भी ईसाई कभी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है?
आप ही कह रहे हैं कि सत्ता वाले लेना,
सत्ता वाले
में ही लगाना है, क्योंकि ईसाई तो हमेशा पाए ही जाएंगे।
तो द्वितीय ऑप्शन वाला एक जीव
सत्ता है परंतु
अनुदीरक है, तो द्वितीय ऑप्शन वाला लेना पड़ेगा।
द्वितीय ऑप्शन वाला ले सकते हैं।
और
वेदक में आवली काल वाला भी सत्ता है परंतु उदीर्णा रुक गई है। तो कदाचित सभी उदीरक एक जीव अनुदीरक, कदाचित नाना जी उदीरक नाना जीव अनुदीरक होते हैं। बारह कषाय और छह नौ कषायों के उदीरक और अनुदीरक नाना जीव नियम से है। पुरुष वेद के सब जीव नियम से उदीरक होते हैं, अनुदीरक नहीं होते। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये देवों की बात ख्याल में आई? हाँ मंजू आगे। ना 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 ना, सत्ता होते हुए उदीरणा नहीं कर रहे ऐसे जीव लेना। द्वितीय उपशम वाले हैं,
द्वितीय उपशम वाले और कुत्ते
वाले जो आवली में प्रवेश कर चुके हैं।
सो इसे नाना जीव भी हो सकते हैं?
हाँ, अनेक नाना इन्हें दो हो गए तो भी नाना कहेंगे। हाँ। अभी भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, इन्हें कितने भाग प्रमाण है उसकी बात करेंगे। नंबर 17 है ना ये?
17
उत्तर प्रकृति उदीर्णा नंबर 17। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व और नपुसक वेद के उदीरक जीव अनंत बहुभाग प्रमाण है। क्योंकि नपुसक वेद के उदीरक में तो एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक तो सब लेना ही लेना, सभी नारकी लेना, और फिर वो नपुसक वेदी तिर्यंश मनुष्य भी ले लेना, यानी उनकी तो बहुत सारी होती है ना
संख्या।
तथा अनुदीरक जीव अनंत विभाग प्रमाण, अनुदीरक असंख्यात है फिर भी वो अनंत के सामने उसका अनंत भाग है। सम्यक्त्व के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। देखो यहाँ हर जगह सत्ता वाले ही लिए, यानी सत्ता होते हुए उदीरक अनुदीरक कहते हैं, यानी कितने जीवों की सत्ता है तो असंख्य जीवों की। और उसमें असंख्यात बहुभाग तो उदीरक है और अनुदीरक जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है। सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक जीव असंख्यात विभाग प्रमाण है और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। चार लोभों के उदीरक जीव कुछ अधिक चतुर्थ भाग प्रमाण है।
अच्छा, कुछ अधिक लिया यहाँ पे लोभ का।
और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। उदीरक कुछ अधिक चतुर्थ भाग प्रमाण। और अनुदीरक संख्यात बहुभाग प्रमाण। क्योंकि जो लोग की उदीरणा करने वाले हैं, मान लेते वन फोर्थ कर रहे हैं, क्रोध, कोई क्रोध की कर रहे हैं, कोई मान की माया के लोग। अब जो नहीं कर रहे कौन है? जो क्रोध मान माया की कर रहे हैं वो सभी लोग की नहीं कर रहे हैं, तो वो संख्या बहुभाग में चले जाएंगे।
पर यहाँ पे भी लोग की मुख्यता ली है।
हाँ,
वन फोर्थ कुछ साधिक है,
साधिक वन फोर्थ। स्त्री वेद और पुरुष वेद के उदीरक जीव अनंत वे भाग प्रमाण है। और अनुदीरक जीव अनंत भूभाग प्रमाण
नपुसक,
जैसे नपुसक वेद वाले कर रहे इसमें। हास्य रति भय और जुगुप्सा के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है।
सौरति और शोक का अनु संख्यात बहुभाग प्रमाण है।
संख्यात बहुभाग
तो बहुत ज्यादा है।
रति और शोक के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। अब आदेश से बात करें। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है और अनुदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्योंकि वहां नारकी असंख्यात होते हैं,
तो सत्ता के अपेक्षा में।
सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, यानी उदीरक असंख्यात असंख्यात वे भाग प्रमाण और अनुदीरक असंख्यात बहुभाग प्रमाण। चार क्रोध अरति और शोक के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। अब देखो वहां पर ओग की अपेक्षा लोभ के ज्यादा लिए थे
और
अब नारकियों में क्रोध के ज्यादा लिए।
मनुष्य में मान लेगी।
और अरति शोक तो वहां पर भी संख्यात बहुभाग थे। अधिक कुछ अधिक चतुर्थ भाग। ओ, और यहाँ संख्यात बहुभाग प्रमाण। और अनुदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण। 12 कषाय हास्य रति भय और जुगुप्सा के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। भय और जुगुप्सा की भी उसमें ही लिया। और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है।
तो यहाँ क्रोधी जीव बहुत ज्यादा है।
हाँ ना बारंबार क्रोध में आते हैं ज्यादा, ऐसा ज्यादा क्रोध की मुख्यता है ज्यादा। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। तिर्यंचों में ओग के समान भंग है, इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुसक वेद के उदीरक जीव की पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक कहा ना, तो वो होते ही असंख्यात है, इसलिए उसमें असंख्यात बहुभाग प्रमाण और अनुदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण प्र करना ग्रह हुआ। यानी पंचेंद्र तिरियंच त्रिक में भी किसकी ज्यादा संख्या है, कौन से वेदी वाले की?
नपुंसक वेद की।
सम्मूर्छन सारे जो है ना,
हाँ
वो सारे पंचेंद्र तिरियंच त्रिक में ले लेना, उनकी संख्या ज्यादा है और असंगी की और ज्यादा है, असंख्यात गुना है, संगियों से असंगी ज्यादा है,
हाँ, असंगी ज्यादा।
और उनमें भी नपुंसक वेदी ज्यादा है सम्मूर्छन, इसलिए असंख्यात बहुभाग कहा। देखो स्त्रीवेद और पुरुषवेद के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यानी पंचेंद्रियों में भी नपुंसक वेदी की संख्या असंख्यात गुणा है। और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, किंतु इतनी विशेषता है कि तिर्यंच पर्याप्तकों में, अब तिर्यंच पर्याप्त कहने से स्त्रीवेद के उदीरक जीव नहीं है तथा नपुंसक वेद के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। जब हम तिर्यंच पर्याप्त कहते उसमें भी संख्यात बहुभाग तो नपुंसक वेद और अनुदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। पुरुष वेद के उदीरक जीव संख्यात विभाग प्रमाण है, अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। योनिनी तिर्यंचों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद के उदीरक जीव नहीं है तथा इनमें स्त्रीवेद की अपेक्षा भागा भाग नहीं है, क्योंकि जो सारे वो स्त्रीवेद की उदीरणा करने वाले ही है तो उसकी कंपेयर किसके साथ करेंगे? दोनों को होता जैसे पर्याप्तों में नपुंसक वेदी भी है पुरुष वेदी भी है तो उनमें तो भागा भाग लगाया था। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व और नपुंसक वेद की अपेक्षा भागा भाग नहीं, वो वेद हुआ वेद करना, वो दिख रहे हैं तो वही है, ठीक है वेद की अपेक्षा वही है। मंजूता यहाँ को क्यों नहीं है भागा भाग? हाँ, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानीय और सारे नपुंसक वेदी ही है तो उसी की उदीरणा वाले, अनुदीरक कोई नहीं है। 16 कषाय और 9 कषायों के उदीरक जीवों का भंग पंचेंद्र तिर्यंचों के समान है। और वहाँ कहा था ओग के समान,
ओग के समान
लोग, ओग में कहा लोग है वो चौथे भाग से
ज्यादा।
मनुष्यों में पंचेंद्र तिर्यंचों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है। तिर्यंचों में क्या कहा था?
अनंत विभाग सम्यक्त्व के उदीरक
जीव पंचेंद्र तिर्यंचों के समान, पंचेंद्र तिर्यंचों में
भोग के समान कहा था ना,
संख्यात वे कहा, क्या कहा था? अपर्याप्तों की अपेक्षा, परंतु पंचेंद्र तिर्यंचों की अपेक्षा क्या आया, डिफरेंस क्या आया? देखो पंचेंद्र तिर्यंचों में ओग के समान ही, दोनों में ओग के समान ही बताया था, और ओग में असंख्यात बहुभाग और अनुदीरक असंख्यात विभाग प्रमाण कहा था, उदीरक असंख्यात बहुभाग था। और यहाँ पर
ये तो सम्यक्त्व की बात चल रही है,
सम्यक प्रकृति की बात,
तो असंख्यात विभाग प्रमाण हो गया ना,
यहाँ कहा ना अभी सम्यक्त्व के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण का और ओग में असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहा था और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है असंख्यात के स्थान में संख्यात करना चाहिए, यानी संख्यात विभाग और संख्यात बहुभाग, इनमें स्त्रीवेद के उदीरक नहीं होते।
सो यहाँ पे संख्यात बहुभाग लिया जो एक बार संयुक्त को प्राप्त करके मिथ्यात्व में चले गए और उद्वेलना कर रहे हैं,
उद्वेलना में थोड़ी उसकी
उद्वेलना में नहीं होगी तो यहाँ पे तो उसकी उदीरणा ही नहीं है।
हाँ, तो जीव जब समय दृष्टि है तब उसका उदीरक है, इसीलिए संख्यात्व भाग कहा। इसी प्रकार देखो मनुष्य पर्याप्त को में जानना चाहिए, उसमें क्या विशेषता होगी?
संख्यात लगाना
नहीं, इतनी विशेषता है कि असंख्यात के स्थान में संख्यात करना।
इनमें
स्त्री वेद के उदीरक नहीं होते क्योंकि वो सारे पर्याप्त है, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी होते। इसी प्रकार मनुष्यनियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद के उदीरक नहीं होते, तथा स्त्रीवेद के उदीरक संख्यात बहुभाग प्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। अनुदीरक यानी वो अपगत वेदी श्रेणी में है, वह देवों में मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग नारकियों के समान है। वो तो असंख्यात विभाग वगैरह वगैरह। चार लोभ स्त्रीवेद हास्य और रति के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। वहां क्रोध को संख्यात बहुभाग कहा था, यहाँ लोभ को लिया। और स्त्रीवेद को भी
संख्यात बहुभाग लिया। उससे क्या है?
नहीं, वो तो एवरेज निकाला, सामान्य देवों में बात कर रहे हैं। ऊपर के देवों में तो स्त्रियां ही नहीं है, जो है वो नीचे है, और जो नीचे है वो भी सब देवों के लिए संख्यात बहुभाग प्रमाण है ना। मेजॉरिटी देव तो ज्योतिषी इसमें होते हैं, सारे भौनत्रिक में होते हैं, तो उनमें तो हमने देखा था व्यंतरों में भी एक एक के सामने 32-32 है संख्यात बहुभाग, और अनुदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। ऐसे भी जब हमने संख्या देखी थी, भले प्रत्येक स्वर्ग में असंख्यात है, सबकी टोटल से भी सौधर्म ईशान में ज्यादा है, उनसे भी ज्योतिषियों में ज्यादा है, देखा था ना पहले। जैसे सभी नरकों में असंख्यात है, सभी नरकों में असंख्यात है, परंतु दूसरे से सातवें तक की जो टोटल है उससे भी असंख्यात गुना पहले नरक में।
पहले स्वर्ग
पहले में तो श्रेणी को गुणा कर रहा है, और ये श्रेणी का कुछ भाग है।
हाँ,
साधिक ज्योतिषी करने से देव आदि सभी देव हो जाते हैं। साधिक यानी वो असंख्यात विभाग प्रमाण हो गया उसके, अनुदीरक जीव संख्यात विभाग। हाँ, 12 कषाय देवों की बात चल रही है। 12 कषाय अरति शोक भय जुगुप्सा और पुरुष वेद के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। ये लोग को अलग निकाला ना, उसको संख्यात बहुभाग में लिया,
या पुरुष वेद भी साथ में ले लिया।
पुरुष वेद को, क्योंकि स्त्री वेद को संख्यात बहुभाग कहा था, पुरुष वेद को यहाँ ले लिया। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सौधर्म और ईशान देवों में जानना चाहिए। लोग को छोड़ा क्योंकि चार को संख्यात बहुभाग में लिया, और जो सामान्य देवों में घटित होता है स्त्रीवेद का, वही भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सौधर्म ईशान में घटित होगा। ऊपर तो स्त्रीवेद वाले है ही नहीं है, तो अगर हम देवों में सामान्य की अपेक्षा छोड़कर सौधर्म ईशान वगैरह लगाएंगे तो सनत कुमार के ऊपर तो सारे पुरुष वेद की उदीर्णा करने वाले। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। अब यहाँ सहस्रार तक के ग्रुप बनाए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद के उदीरक देव नहीं हुए, पुरुष वेद की अपेक्षा भागा भाग नहीं है, आनंद से लेकर नौ ग्रवेक तक के देवों में मिथ्यात्व 13 कषाय,
अरति
शोक भय और जुगुप्सा के उदीरक जीव
संख्यात विभाग
प्रमाण है। ऊपर क्या कहा था, भय जुगुप्सा का तो लिया था, यहाँ मिथ्यात्व के लिए आनंद से लेकर मिथ्या दृष्टि कम है, यहाँ पर
सम्यक दृष्टि ज्यादा है।
वहाँ नीचे मिथ्यात्व के लिए संख्यात बहुभाग लिया था ना, नहीं मिथ्यात्व को नहीं लिया था, चार लोग त्रिवेद और हास्यरति के लिया था संख्यात बहुभाग। वहाँ मिथ्यात्व की बात नहीं की थी सामान्य देवों ने, ऊपर लिया था नारकियों के समान है, यानी असंख्यात बहुभाग वगैरह वगैरह। हाँ यहाँ तीन ही लोग लिए, तीन लोग क्यों लिए?
यह तो अनंत अनुमति का उदय कम वाला होगा ना, उदय ना करने वाला।
हाँ यहाँ क्या है समय दृष्टि,
पर यहाँ पे तेरह क्यों बताया, इससे मैं सोच रहा था। बारह का उदय की अपेक्षा हम लोग को लेना है तो यहाँ पे तेरह कसर बताया। अच्छा वो अनंत अनुमति का लोग भी बहुभाग प्रमाण है।
देखो मिथ्यात्व तेरह कषाय अरति शोक भय और जुगुप्सा के उदीरक जीव संख्यात्वे भाग प्रमाण।
तेरह कषाय
ऊपर हमने क्या देखा था, वहाँ भी संख्यात्वे भाग थे।
हाँ।
अब यहाँ तेरह को संख्यात्वे भाग, वहाँ बारह को संख्यात्वे भाग में लिया था।
हाँ।
यहाँ तेरह को संख्यात्वे भाग में लिया,
अनंत अनुमति को भी संख्यात में ले लिया संख्यात्वे भाग,
संख्यात्वे भाग।
तो संख्या बहुभाग
जरा जरा पूरा पढ़ने दो, फिर विशेषार्थ पढ़ेंगे फिर बाद में। हाँ लोग लेना एक और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण, विशेषार्थ अभी बाकी है ना उसको। हाँ। हम देखेंगे सम्यक्त्व हास्य रति और तीन लोग लिया ना यहाँ पर।
हाँ।
थोड़ा आगे पढ़ते तो सारा खुलासा हो जाता है। सम्यक्त्व हास्य रति और तीन लोग के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है,
प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्ञा लेना पड़ेगा
क्योंकि समय दृष्टि है तो उसके तो उदीरक होगे कि नहीं होगे।
हाँ।
और अनुदीरक जीव संख्यात्वे भाग प्रमाण है, पुरुष वेद की अपेक्षा भागाभाग नहीं है। समय मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है, अनुदिश से लेकर, क्योंकि अभी यहाँ तक तो ग्रेवेग तक लिया तो समय मिथ्यात्व के भी उदीरक वहाँ हो गए। अनुदिश से लेकर अपराजित तक के देवों में सम्यक्त्व के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण। वहाँ संख्यात बहुभाग प्रमाण है ना, नहीं वहाँ पर भी कितना असंख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग थे।
हाँ। ये तो कृतकों की और
अनुदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है, शायिक में उसकी सत्ता कहाँ है?
शायिक को नहीं देना है, द्वितीय उपसम और कृतकों के वेदक वाले को लेना पड़ेगा।
तीन लोग हास्य और रति के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि वो तीन लोग की उदीरणा करते हैं, वहाँ तो अनंत अनुबंधी की कोई करेगा ही नहीं, तीन लोग या मान या माया इस तरह से, वो भी संख्यात बहुभाग है। और अनुदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है, नौ कषाय नौ कषाय लिए, तीन लोग को ऊपर छोड़ा था।
हाँ,
अब बाकी नौ कषाय रह गए, ये नौ कषाय की बात नहीं है, नौ कषाय की बात है, यानी तीन तीन और तीन। हाँ क्रोध मान माया, अरति शोक भय और जुगुप्सा के उदीरक जीव संख्यात्वे भाग प्रमाण है, अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। पुरुषवेद की अपेक्षा भाभागाभाग नहीं है, इसी प्रकार सर्वार सिद्धि के देवों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि असंख्यात के स्थान में संख्यात करना चाहिए, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूर्ये लो कालो सोवाणी मस्तकनमो सदा देखमो
நமோ எந்தானந்தமோ சிதானந்தமோ ஆயிரந்தமோ உஜானந்தமுலை சுவிஸ்தானம் நமோ எந்தானந்தமோ சிதானந்தமோ ஆயிரந்தமோ உஜானந்தமுலை சுவிஸ்தானம் நமோ எந்தானந்தமோ சிதானந்தமோ ஆயிரந்தமோ உஜானந்தமுலை சுவிஸ்தானம் நமோ எந்தானந்தமோ சிதானந்தமோ